नमस्कार भारत, 18 फरवरी दिन गुरुवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। जेएनयू मामले में नहीं थम रहा है विवादों का बवंडर, एक बार फिर हुई अदालत में मारपीट। क्या सरकार और पुलिस ने मामले से निपटने में गलती की है?
सबसे बड़ी सरकार की गलती ये हुई कि इसमें दिल्ली पुलिस को नहीं उलझना चाहिए था। अगर ये ऑफेंसिव नारे भी थे तो इसको वाइस चांसलर को कहना चाहिए था कि इंक्वायरी करो या किसी को सस्पेंड करो या कुछ करो।
मतभेद के कारण जेएनयू एबीवीपी के दो छात्र नेताओं ने संगठन को छोड़ा। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर नरेंद्र मोदी से मिलेंगी महबूबा मुफ्ती, और भोपाल के कव्वाली महोत्सव में अमरीकी और इसराइली कव्वालों ने छेड़ी तान। होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार और फिर बुधवार को हुई मारपीट के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ओपी शर्मा को भी दिल्ली पुलिस ने समन भेजा है और उन्हें आज पेश होने को कहा है। कल पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को पेश किया जा रहा था, तब वकीलों के एक समूह ने उनके साथ हाथापाई की और नारेबाजी भी की। बाद में सुप्रीम कोर्ट के भेजे सीनियर वकीलों के दल के खिलाफ भी इन वकीलों ने गाली गलौज की। कन्हैया कुमार को देशद्रोह से जुड़े मामले में 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तुर्की की राजधानी अंकारा में हुए एक ताकतवर बम धमाके में 28 लोगों की मौत हो गई है और 61 लोग घायल हो गए हैं। धमाका तुर्की की संसद और सैन्य मुख्यालय के पास हुआ। मरने वालों में सैनिकों के अलावा आम नागरिक भी शामिल हैं। धमाका विस्फोटकों से भरी एक कार में हुआ। हमले के लिए कौन जिम्मेदार है इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की 2 दिनों की बैठक आज से शुरू हो रही है, जिसमें ब्रिटेन को यूरोपीय संघ में बने रहने के लिए क्या प्रस्ताव दिया जाए इस पर चर्चा होनी है। ब्रिटेन संघ में बने रहने के लिए प्रवासियों के मुद्दे समेत कई और अहम मामलों में छूट चाहता है। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की मांगों पर आम सहमति बन जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। डोनाल्ड टस्क:
Now I can say only one thing. Today, the UK is still a member of the European Union.
इस वक्त मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूं और वह ये कि ब्रिटेन अब भी यूरोपीय संघ का सदस्य है। मुझे उम्मीद तो है कि भविष्य में भी ये स्थिति बनी रहेगी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये थे यूरोपीय संघ के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। खेलकूद के साजो सामान बनाने वाली कंपनी नाइकी ने फिलीपींस के मुक्केबाज मैनी पैकियाओ के साथ अपना अनुबंध खत्म कर दिया है। मैनी पैकियाओ ने हाल ही में समलैंगिकों के बारे में एक विवादित बयान देते हुए कहा था कि वो जानवरों से भी बदतर होते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान के लिए माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन नाइकी के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी किसी भी तरह के भेदभाव में यकीन नहीं रखती और पैकियाओ का बयान निंदनीय है। पैकियाओ 8 अलग अलग भार श्रेणियों में विश्व खिताब जीत चुके हैं। सीरिया में लड़ाई में फंसे 5 इलाकों तक मानवीय सहायता पहुंचनी शुरू हो गई है। राहत सामग्री से लदे कई ट्रक इन इलाकों तक पहुंचने शुरू हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और रेड क्रेसेंट के बीच समझौते के तहत सीरिया में जारी संघर्ष में फंसे लाखों लोगों तक सहायता पहुंचाने की ये मुहिम शुरू की गई है। अमरीका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने कहा है कि वो चीन के साथ गंभीर विचार विमर्श करना चाहते हैं। केरी ने दक्षिणी चीन सागर में चीन के अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम स्थापित करने की खबरों का जिक्र करते हुए ये बात कही। बीबीसी समाचार।
तारीख 18 फरवरी दिन गुरुवार। नमस्कार भारत में, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। कल एक बार फिर दिन भर पटियाला हाउस कोर्ट सुर्खियों में रहा। जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की पेशी के दौरान एक बार फिर हंगामा हुआ, धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई, गाली गलौज हुई। सुप्रीम कोर्ट को मामले में दखल देना पड़ा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी वरिष्ठ वकीलों की टीम हालत का जायजा लेने पहुंची तो उन्हें भी विरोध झेलना पड़ा। अदालत ने अब कन्हैया कुमार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। निखिल रंजन से सुनिए रिपोर्ट।
जेएनयू के छात्र कन्हैया कुमार की बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में पेशी से पहले ये नारे गूंजते रहे।
बंदे,
नारा लगाने वाला ये दल वकीलों का था जिन्होंने हाथ में तिरंगा ले रखा था। जल्द ही वकीलों का एक दूसरा दल भी सामने आया और फिर दोनों गुट आपस में भिड़ गए। इसके बाद जब कन्हैया कुमार की अदालत में पेशी हुई तब पुलिस के वहां मौजूद होने के बावजूद उनसे मारपीट हुई। हालांकि दिल्ली पुलिस के प्रमुख बीएस बस्सी का कहना है कि सिर्फ धक्का मुक्की हुई। बुधवार को वो प्रधानमंत्री से भी मिले और फिर कहा कि मामले की जांच सही तरीके से आगे बढ़ रही है।
जो लोग गिरफ्तार हुए वो जायज गिरफ्तार हुए, जिनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई बिना अरेस्ट के वो जायज डाली गई। बिल्कुल शत प्रतिशत फेयर इन्वेस्टिगेशन, आप आगे आगे देखिए होता है क्या।
कोर्ट में कन्हैया के तरफ से एक पत्र जारी किया गया जिसमें शांति की अपील की गई है और संविधान में पूर्ण आस्था होने की बात कही गई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने कन्हैया कुमार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। दिल्ली हाई कोर्ट परिसर में हिंसा की खबरों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और 5 वरिष्ठ वकीलों के एक दल को वहां की स्थिति का जायजा लेने भेजा। इस दल ने कोर्ट से लौटने पर कहा कि कोर्ट परिसर में डर का माहौल है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण,
वहां से खबरें आने लगी कि वहां पर कुछ वकीलों ने कुछ और वकीलों के ऊपर अटैक किया है, कुछ जर्नलिस्ट के ऊपर अटैक किया है और उसके बाद ये खबर आई कि कन्हैया कुमार को भी मारा पीटा गया है।
इस बीच बीजेपी ने अब राजनीतिक रूप से इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाने का फैसला किया है। पार्टी का कहना है कि वो अगले कुछ दिनों में जमीन पर उतरकर राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाने के लिए काम करेगी। पार्टी के सांसदों से संसद के भीतर और बाहर इस बहस में खुलकर हिस्सा लेने को कहा गया है। बीजेपी का कहना है कि वो इस मामले में विरोधी दलों के दोहरे रवैये को जनता के सामने लाएगी। हालांकि इसी बीच पार्टी के कुछ नेताओं ने ये जताने की भी कोशिश की है कि वो जेएनयू के खिलाफ नहीं है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देश का एक बहुत ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, जिसकी एक देश में गरिमा भी है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ये टैक्स पेयर्स के पैसे से चलता है, वहाँ के विद्यार्थी भी पढ़ने में अच्छा नाम करते हैं, हमें मालूम है। हम ऐसा समझते हैं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में एक वैकल्पिक आवाज भी है जो प्रभावी है, सशक्त है और रचनात्मक है। देश उस आवाज को भी सुनना चाहता।
बुधवार को पूरे दिन पटियाला हाउस कोर्ट में हलचल मचती रही और कन्हैया कुमार को जेल भेज दिया गया। पुलिस और सरकार सही जांच की बात कह रही है लेकिन नारा लगाने वाले छात्रों का अब भी पता नहीं है। उधर जेएनयू में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है।
इस बीच जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से ये खबर आई है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2 छात्र नेताओं ने कुछ मुद्दों पर मतभेद के चलते संगठन से इस्तीफा दे दिया है। जेएनयू यूनिट के ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रदीप नरवाल और स्कूल ऑफ सोशल स्टडीज यूनिट के सेक्रेटरी अंकित हंस ने संगठन से अपने को अलग कर दिया है। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने एबीवीपी के नेता सुमित कुमार से इसकी वजह पूछी।
ये अभी तक इसकी हम लोग से उनसे से मुलाकात नहीं हो पाई लेकिन हमें ऐसा नॉलेज में आया कि कुछ पर्चे आ जाए हैं यहाँ पे मिस में डाले गए हैं जिसमें इस तरह की खबरें हैं कि उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन वो लोग अभी हम लोग से उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया था तो हम लोग उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन लोगों के फोन स्विच ऑफ जा रहे हैं इसलिए उन लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं आ पा रहा है। लेकिन हमें जहां तक ऐसी सूचना मिल रही थी कि कुछ दिनों से उनके ऊपर प्रेस डाला जा रहा है टीचर्स की ओर से, क्योंकि वो लोग एक ऐसे सेंटर से आते हैं ट्रिपल एस से आते हैं जहां के मैक्सिमम टीचर इस समय जो देशद्रोह के विद्रोहियों के खिलाफ समर्थन में कुछ टीचर यहाँ के गए हैं तो उसमें उस सेंटर के मैक्सिमम टीचर भी उनके सपोर्ट में है। तो खबर आ रही थी कि इनके ऊपर टीचर्स के द्वारा प्रेशर डाला जा रहा था कि आप लोग वहाँ से विड्रॉ करो नहीं तो हम आपके ऊपर मतलब आपको ग्रेड में कम कर देंगे या फिर क्योंकि ये एमए के छात्र हैं और इन्हें एमफिल में भी जाना है तो मैक्सिमम प्रेशर में आके इन्होंने ऐसा किया होगा, यह हमारी संभावना है। अभी तक
3 छात्रों की बात हो रही थी लेकिन पता चला कि शायद 2 ही छात्र हैं। आप कितने छात्रों के संख्या कन्फर्म कर रहे हैं?
3 में से राहुल यादव जी मुझसे मिल चुके हैं, उन्होंने कहा कि मेरी ओर से ऐसी कोई बात नहीं हुई है और राहुल यादव जी से अभी अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात भी, उन्होंने कहा मेरी ओर से कोई नहीं है, मेरा नाम गलत दिया गया है लिस्ट में।
इन लोगों ने एक कोई लेख भी लिखा है और अपनी तरफ से कुछ बात कही है, क्या वजह हो सकती है?
मैंने वो लेख अभी अभी पढ़ा है फेसबुक के थ्रू, मैंने वो लेख पढ़ा है मेरे पास जो आया है। मुझे सिर्फ एक बात की, रोहित वेमुला के केस पे इस पे कोई हम लोग से डिस्कशन नहीं हुआ था, मनोज स्मृति की बात पे डिस्कशन हुआ था एक बार लेकिन हम लोगों ने कि उनसे साथ बात हुई थी तो वो लोग मान गए थे, मतलब ऐसा कोई जिद नहीं तो वो खाली डिस्कस करना चाहते थे। तो डिस्कशन में जो बात सामने आई थी वो ये थी कि हमारा कभी भी किसी भी बुक को जलाने का कोई आज तक का ट्रेंड नहीं रहा है, यहाँ तक कि हमारे विरोध में भी कोई किसी बुक में लिखता तो हम किसी बुक को नहीं जलाते, तो इसी पे खाली विचार विमर्श हो रहा था। तो वो लोग ये मान गए थे कि हाँ जलाना हमारे ट्रेंड में नहीं तो हम किसी भी बुक को जलाएंगे नहीं, लेकिन अभी अचानक से ये अभी फिर आया है कि इस तरह की बातें हो रही हैं। तो यही बात हो रही थी कि कुछ दिन पहले अभी टीचर्स का प्रेशर आ रहा था क्योंकि वो ऐसे सेंटर पे आते हैं जहाँ के पूरी की पूरी फैकल्टी लगभग उनकी 95% जो फैकल्टी है वो कहीं ना कहीं उस आइडियोलॉजी से बिलोंग करती है जो कि क्योंकि इसमें देशद्रोही छात्रों के समर्थन में उतर के आई है, तो कहीं ना कहीं टीचरों के द्वारा भी ऐसे छात्रों पर प्रेशर बनाया जा रहा है जो कि हमारे विचार को सपोर्ट कर रहे हैं।
जेएनयू की घटना और उस पर सरकार की कार्रवाई ने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है। राष्ट्रवाद से लेकर छात्रों के व्यवहार और सरकार के रुख तक पर अलग अलग बातें सुनी कही जा रही हैं। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने वरिष्ठ पत्रकार शिखर गुप्ता से पूछा कि आखिर गलती कहां से शुरू हुई।
देखिए, इसमें सरकार को बहुत जल्दी पहले इंटरवीन करना चाहिए था। और ये विश्वविद्यालयों में कैंपस में लोग नारे वारे लगाते हैं, अगर लड़का लड़कियां कैंपस में थोड़ा शोर शराबा नहीं करेंगे और कहां करेंगे, ये सब भड़ास होती है, निकल जाती है। इसके लिए जाना, पुलिस को भेजना, वहां पे लोगों को गिरफ्तार करना, और वो भी गिरफ्तार देशद्रोह के मामले में, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अपरिष्कार काम हो रहा है, बहुत ही इंसिविलिटी का काम हो रहा है। सबसे बड़ी सरकार की गलती ये हुई कि इसमें दिल्ली पुलिस को नहीं उलझना चाहिए था। अगर ये ऑफेंसिव नारे भी थे तो इसको वाइस चांसलर को कहना चाहिए था कि इंक्वायरी करो या किसी को सस्पेंड करो या कुछ करो, लेकिन दिल्ली पुलिस का इसमें उलझना और इतनी बेवकूफी के साथ भी वो देशद्रोह का आरोप लगा दे, जो भारत की किसी अदालत में कभी सस्टेनेबल होता ही नहीं है। जब तक कोई हथियार उठा के गोली ना चलाए किसी के ऊपर, या कोई सेबोटाज ना करे, रेलगाड़ी को ना गिराए, तो ये देशद्रोह का अपराध भारत में नहीं चलता है। क्योंकि ये 1962 से बहुत जजमेंट्स है हमारे अदालतों की, खास करके सुप्रीम कोर्ट की, जिन्होंने बड़ा साफ कर दिया है कि कोई अपने व्यूज के लिए, कोई अपने नारों के लिए, व्यूज के लिए, सिंपथीज के लिए, सहानुभूतियों के लिए कोई देशद्रोही नहीं बन सकता है। तो ये मैं कहूंगा कि अल्ट्रा नेशनलिज्म की तरफ एक डिबेट धकेल दी है, जो कि अच्छी बात नहीं है भारत के लिए।
कोर्ट में जो कुछ भी हो रहा है, एक तरफ वकील प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो पुलिस प्रमुख हैं दिल्ली के, वो इस तरह के जो बयान दे रहे हैं, उसको लेकर के भी बड़ी शंका उठ रही है लोगों के मन में।
देखिए, दिल्ली के पुलिस प्रमुख तो इस टाइम टीवी स्टार है, वो जो कहे उसकी टोली बनती है, वो कहने से रुकते भी नहीं है, उन्होंने कुछ कविता भी सुना दी। तो ये मैं समझूंगा कि जो भारत की एस्टेब्लिशमेंट है, इसको भी मीडिया से तो रिस्पॉन्ड करना सीखना चाहिए। हर कोई पब्लिसिटी चाहता है, हर कोई उसी समय कुछ बोलना चाहता है, तो कुछ लोग अगर ना बोले, चुप रह के अपना काम करें, तो वो बेहतर होगा। लेकिन मैं आपकी बात मानूंगा, इससे कोई स्थिति बेहतर नहीं हो रही है।
ये जो कोशिश की गई कन्हैया कुमार की तरफ से अपील दिखा करके ये कहने की कि वो अपने इरादों पर झुक रहा है, लेकिन उसने कहा है कि वो संविधान में आस्था रखता है, संविधान के प्रियम्बल में आस्था रखता है।
अगर कोई भी भारतीय कहता है कि मैं संविधान में विश्वास करता हूं, तो उस पर झुकने की बात क्या है। आप देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी भी जब कश्मीर गए थे और उन्होंने कहा था मैं बातचीत करूंगा, तो वहां से जो अलगाववादी ताकतें हैं, लोग हैं, उन्होंने कहा कि साहब आप तो कहते हैं कि आप भारत के संविधान के दायरे में बात करेंगे, तो हम बात कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इंसानियत के दायरे में बात करूंगा। तो ये राजनीति में चीजें संभालने वाली होती है। राजनीति कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं होती कि वो बिल्कुल क्लिनिकल और कट एंड ड्राइड हो या मैथमेटिक्स नहीं होता। राजनीति तो एक अलग तरह की चीज है।
ये वकीलों का जो व्यवहार रहा है वो समय से परे है, वो हिंसा पर उतारू हो रहे हैं और सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है।
ये साफ है कि कोई पॉलिटिकली अलाइंड है, और ये पहली बार नहीं है भारत में जब उन्होंने गुंडाइज्म किया है, पहले भी हुआ है। मुझे जहां तक याद है, मद्रास हाई कोर्ट पे एक बार एक जज को घेराव कर लिया था, फिर पुलिस अंदर बुलाई गई, जज को छुड़ाने के लिए तो पुलिस के ऊपर केस कर दिए गए। तो ये बार एसोसिएशन है, वकील हैं, बहुत ज्यादा वकील हैं, हर किसी के पास काम भी नहीं है, और हमारे कोर्ट की प्रोसेसेस ऐसी हैं कि वो एडजर्नमेंट के बाद एडजर्नमेंट चलती रहती है, तारीख के बाद तारीख, तो हर वकील को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिलता रहता है, बाकी टाइम खाली घूमते हैं। तो मैं कहूंगा बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट बात है, शर्मनाक बात है कि कोर्ट में हुआ, क्योंकि जब पुलिस या कोई सरकार किसी कर देती है तो उसके बाद चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लश्कर ए तैयबा का टेररिस्ट ही ना हो, चाहे वो कसाबी क्यों ना हो, लेकिन उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी फिर सरकार की होती है, और उसको सजा या जेल या उसको फांसी जो भी देना हो वो सिर्फ अदालत ही दे सकती है।
इस वक्त किसकी ओर लोग उम्मीद की नजर से देख सकते हैं?
देखिए, अब इस समय तो प्रधानमंत्री होने की तरफ देखना है, उन्हीं से कुछ सिग्नल आने चाहिए, जैसे उन्होंने आमिर खान को किया बम्बई में जाके, उससे थोड़ा प्यार मोहब्बत से बात कर ली, उसको खाने पे बुला लिया, उसको सिर में हाथ फेर लिया, इतना ही सिग्नल काफी होता है और इसी से सारी टेंशन खत्म हो जाती है।
वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता से बात कर रहे थे निखिल रंजन।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। कल रात तुर्की की राजधानी अंकारा में हुए एक बड़े धमाके में 28 लोगों की मौत हो गई है और 60 से ज्यादा घायल हैं। हाल के महीनों में तुर्की में कई हमले हुए हैं। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट के साथ हैं प्रभात पांडे।
लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें, घायलों को अस्पताल ले जाती एम्बुलेंस और सड़क पर लाशों का ढेर। अंकारा में ऐसा ही मंजर था जब विस्फोटकों से लदे एक वाहन में जोर का धमाका हुआ। तुर्की की संसद और सैन्य मुख्यालय के बेहद करीब हुआ ये धमाका। उस वक्त कई सैन्य वाहन वहां से गुजर रहे थे। तुर्की के उप प्रधानमंत्री नुमान कुर्तोमुश ने 28 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस घटना को किसने अंजाम दिया अभी इसका पता नहीं चल पाया है। विस्फोट की जगह से मिले सुरागों की जांच की जा रही है। अभी हमें पता नहीं चल पाया है कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है, लेकिन हम जल्द ही इसका पता लगा लेंगे और उन्हें कड़ी सजा देंगे। ये थे तुर्की के उप प्रधानमंत्री कुर्तोमश। मरने वालों में सैनिकों के अलावा कई आम नागरिक भी हैं। जारी तस्वीरों में विस्फोट के बाद आग और धुएं का गुबार देखा जा सकता है। सरकार ने इसे आतंकी कार्रवाई करार दिया है। हाल के दिनों में तुर्की पर कई हमले हुए हैं। पिछले दिनों इस्तांबुल में हुए एक आत्मघाती हमले में 10 लोगों की मौत हो गई थी। अधिकारियों का कहना है कि उस धमाके में हमलावरों का संबंध अपने को इस्लामिक स्टेट कहने वाले चरमपंथी गुट से था।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
एक बार फिर लौटते हैं भारत की ओर। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन को लेकर जम्मू कश्मीर मामलों के भाजपा प्रभारी राम माधव ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती से तकरीबन 1.5 घंटे तक बातचीत की। सरकार गठन को आगे बढ़ाने के लिए आने वाले दिनों में महबूबा मुफ्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल सकती हैं। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर में बीजेपी के नेता इस मुलाकात को सरकार के गठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण बैठक करार देते हुए बताया कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महबूबा मुफ्ती सरकार के गठन को लेकर मुलाकात कर सकते हैं, जिस पर किसी को हैरानगी नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के अध्यक्ष सतपाल शर्मा ने बीबीसी के साथ खास बातचीत में बताया।
कुल मिला के कुछ एक ऐसे इश्यूज थे जिसको लेकर पीडीपी की जो सदर है महबूबा मुफ्ती, उनको कुछ रिजर्वेशन थी, लेकिन यकीनन अगर महबूबा मुफ्ती आने वाले दिनों के अंदर देश के प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगी तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए।
बुधवार को हुई इस बैठक के हवाले से पीडीपी का कोई भी नेता खुलकर कुछ भी बोलने पर तैयार नजर नहीं आया। राजनीतिक विश्लेषकों का ख्याल है कि अगरचे आज की बैठक से काफी उम्मीदें लगाई जा रही थी, लेकिन कुछ ठोस सामने आने से रह गया। वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक कासिम सज्जाद बताते हैं।
महबूबा जी ने इस बात का आर किया कि वो प्राइम मिनिस्टर से मिलकर ही इसी बात को फाइनल कर सकती है। मेरा लगता है कि राम माधव के साथ जो बातचीत हो गई वो हर लिहाज से सफल नहीं हुई।
7 जनवरी को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू है। महबूबा मुफ्ती ने अपने पिता के निधन के एक महीने बाद कुछ दिन पहले जम्मू में पहली बार सरकार के गठन के हवाले से अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बताया था कि केंद्र सरकार अगर जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनाना चाहती है तो उसके लिए जरूरी है कि केंद्र सरकार उसके लिए पहले माहौल बनाए। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार से ये भी मांग की थी कि वो सरकार बनाने से पहले कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स या CBMs उठाने की पहल करे। तहां बीजेपी ने पहले ही दिन से इस बात को दोहराया कि वो 11 महीने पहले बनाए गए एजेंडा ऑफ एलेनिस की हर शर्त पर कायम है, जिसमें कोई भी बदलाव लाने का सवाल ही नहीं है। माजिद जहांगीर, बीबीसी हिंदी, श्रीनगर।
और अब जान लेते हैं कि देश और दुनिया की किन हलचलों पर रहेगी हमारी नजर।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अपने मंत्रिमंडल के साथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी और पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर हुई मारपीट के बाद दिल्ली की पुलिस और कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहे हैं। इसी मुद्दे पर केजरीवाल राष्ट्रपति से चर्चा करेंगे। इसके अलावा जेएनयू के ही मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी देश के विभिन्न हिस्सों में रैलियां और प्रदर्शन करेगी। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर सोमवार और फिर बुधवार को हुई मारपीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सीरिया में संघर्ष विराम शुरू करने की मियाद शुक्रवार को खत्म हो रही है। ऐसे में सीरिया के घटनाक्रम पर भी होगी हमारी नजर। तुर्की के अंकारा में हुए विस्फोट के बाद जांच प्रक्रिया पर भी होगी हमारी नजर। बुधवार को इन धमाकों में 28 लोगों की मौत हो गई थी। ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की दो दिन की बैठक आज से शुरू हो रही है। बैठक में यूरोपीय संघ में ब्रिटेन को बने रहने के लिए क्या प्रस्ताव पेश किया जाए, इस पर चर्चा होगी।
और अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का, जहां अंतर्राष्ट्रीय कव्वाली महोत्सव का आयोजन किया गया है। भोपाल में आयोजित इस दो दिवसीय महोत्सव में भारत के कव्वालों के साथ ही इसराइल और अमेरिका के कव्वालों ने भी शिरकत की। पेश है भोपाल से शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
कव्वाली के शौकीन लोगों के लिए ये एक अलग ही अनुभव था जब उन्हें इजरायली कव्वाल शाय बिन तसूर से सूफी संत हजरत नवाब खादिम हसन खुदरी की नज्म को सुनने का मौका मिला। शाय बिन तसूर 18 साल से शास्त्रीय संगीत और कव्वाली की महफिलों में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन भोपाल के लोगों के सामने प्रस्तुति देने का उनका पहला मौका था। शाय बिन तसूर तेल अवीव में रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक साल भोपाल में रहकर उस्ताद फरीदुद्दीन डागर से ध्रुपद भी सीखा है। उन पर भारतीय संगीत की ऐसी दीवानगी चढ़ी कि अब वो पूरी दुनिया को कव्वाली से रूबरू करवा रहे हैं। उन्होंने हिब्रू में भी कव्वाली पेश की। वहीं अमेरिकी कव्वाल ताहिर हुसैन ने भी कव्वाली का ऐसा समा बांधा कि हर कोई झूम उठा। ताहिर कनाडा में पैदा हुए हैं और पैदाइश के वक्त जेफरी लियोंस के रूप में जाने जाते रहे, लेकिन 17 साल की उम्र में उन्होंने भारत का रुख किया और उसके बाद उन्होंने राहत फतेह अली खान, पशुपति नाथ मिश्रा, शेर अली खान और मुअज्जम कव्वाल से संगीत की शिक्षा ली। उन्होंने कव्वाल बनने के अपने सफर के बारे में बताया।
लेकिन जब मैं कम से कम 15 साल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का टेप सुना और उसके बाद साबरी बंधु जो कराची वाले, बहुत अच्छा लगेगा। और उस वक्त क्लासिकल म्यूजिक शुरू होगा, ख्याल चुमरी ध्रुपद, तो 5 साल बाद कव्वाली शुरू होगा, फनाफिया दापाड़ी 15 साल हो गया चलता है।
ताहिर अब कैलिफोर्निया में रहते हैं, लेकिन दुनिया भर में कव्वाली के लिए सफर करते हैं। हालांकि वो मानते हैं कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। शुरहनियाजी, भोपाल।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का, प्रभात पांडे के साथ। प्रभात, ये बताइए पहले कि ये फ़ोन जो है फ्रीडम 251, उसके बारे में कितनी चर्चा है अखबारों में?
जी, अखबारों में काफ़ी चर्चा, और मैं देख रहा था सुबह 6 बजे से जब से इसकी ऑनलाइन बिक्री शुरू हुई है, आप भी काफ़ी कोशिश कर रहे थे लेकिन वो शायद सिस्टम खुला नहीं।
और अभी ट्विटर की बात करें प्रभात, तो देखिए इस पर टॉप ट्रेंड कर रहा है। और मज़ेदार बात यह है कि टॉप ट्रेंड इसलिए नहीं कर रहा है कि इसमें काफ़ी रुचि है, लोग नाराज़ हैं क्योंकि साइट पूरी क्रैश हो गई है।
जी जी, अब 251 रुपये का फ़ोन कौन नहीं लेना चाहेगा पंकज जी। ये खबरों के साथ साथ, खबरों के अलावा बड़े बड़े पूरे सभी प्रमुख अखबारों में एक एक पन्ने का विज्ञापन छपा हुआ है फ्रीडम 251 का। कंपनी ने, रिंगिंग बेल्स नाम की एक कंपनी है जिसने दावा किया है भारतीय फ़ोन है और 70% ये मेक इन इंडिया फ़ोन है और आने वाले दिनों में ये पूरा 100% मेक इन इंडिया हो जाएगा।
ये दावा किया जा रहा है,
ऐसा दावा किया जा रहा है कंपनी की तरफ से। 251 रुपये का स्मार्टफोन, तो जाहिर है उसको लेकर लोगों की रुचि है। इसके अलावा सारे सभी अखबारों में पिछले कई दिनों की तरह JNU से जुड़ी हुई खबरें प्रमुखता से छापी गई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी पहली खबर इसको बनाया है, कॉप्स गिव गून्स अ फ्री हैंड अगेन। कल जो बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर जो है कन्हैया कुमार JNU छात्र संघ के अध्यक्ष, उनके साथ जो मारपीट और गाली गलौज की घटना हुई थी, उसको इन्होंने हेडलाइन बनाया हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन भी यही है इसी घटना को लेकर, और पहली खबर को उन्होंने हेडलाइन दी है, लॉयर्स टर्न्स लॉलेस अगेन। इसके अलावा जो दिल्ली के पुलिस प्रमुख हैं बस्सी, उनसे जुड़ी हुई भी कई खबरें छाई हुई हैं। और साथ ही ये खबर है कि आलोक वर्मा टू बी दिल्लीज नेक्स्ट टॉप कॉप, 29 फरवरी को बस्सी रिटायर हो रहे हैं, तो आलोक वर्मा दिल्ली के जो है वो पुलिस प्रमुख बनने जा रहे हैं।
और बस्सी साहब ने इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पद के लिए अप्लाई भी किया है, कल उन्होंने माना था, लेकिन उसमें सच्चाई क्या है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा।
जी जी। इसके अलावा पंकज जी, अमर उजाला में आरक्षण को लेकर कई जिलों में, हरियाणा के कई जिलों में जाटों के चक्का जाम से रोजमर्रा की चीजों की दिक्कत हो रही है, ये खबर भी प्रमुखता से छपी हुई है। इसके अलावा अमर उजाला में खबर छपी है कि इलाहाबाद की एक अदालत में राहुल गांधी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाने की अर्जी स्वीकार कर ली गई है। उन पर ये आरोप है इस अर्जी में कि उन्होंने जेएनयू में
उन छात्रों के साथ खड़े हुए जो जिन पर देशद्रोह के आरोप हैं।
जी जी। इसके अलावा एक दिलचस्प खबर यह है कि राजस्थान में वन रक्षकों के पद पर जो महिलाओं ने आवेदन दिया था तो उनका जो नाप है वो पुरुषों ने लिया है, तो
हाँ, इसको लेकर
काफी विवाद है। और इसमें ये भी अखबार में के हवाले से खबर है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनसे गोला फिकवाया गया और कई तरह की ऐसी चीजें करवाई गई जो कि डॉक्टर उन्हें एडवाइज नहीं करते हैं। तो ये सारी खबरें आज के पेपर अखबारों की सुर्खियां बनी हुई।
बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात पांडे आपका। और अब समय है खेल समाचारों का, रजत चान्ना के साथ।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ रजत चान्ना। कटक में कल हुई रणजी ट्रॉफी मुकाबले के दूसरे सेमीफाइनल में मुंबई को मध्य प्रदेश ने दी कड़ी टक्कर। 571 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही मध्य प्रदेश की टीम ने दिन को 5 विकेट के नुकसान पर 361 रनों पर खत्म किया और मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। पर मुंबई लीड के चलते फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रही और 24 फरवरी को पुणे में मुंबई का फाइनल मुकाबला सौराष्ट्र से होगा। भारत के पूर्व खिलाड़ी मदन लाल ने कहा कि बल्लेबाजी के बल पर मुंबई फाइनल में कड़ी टक्कर देगी।
देखिए, मुंबई के बल्लेबाज हमेशा ही अच्छे रहे हैं और इनका थोड़ा सा जो कड़ी है वो बॉलिंग की है, उस कमजोर कड़ी को ये बैटिंग से कवर कर जाते हैं। मुंबई को हराना इतना आसान नहीं है और पुणे में मैच हो रहा है जहाँ की विकेट बहुत अच्छी है और वहाँ पे रन भी काफी ज्यादा बनते हैं, मुकाबला काफी अच्छा होगा।
मध्य प्रदेश के लिए नमन ओझा और हरप्रीत सिंह ने 113 और 105 रनों की शतकीय पारी खेली। वहीं मुंबई के लिए सूर्य कुमार यादव और कप्तान आदित्य तरे ने 115 और 109 रनों की पारी खेली और मुंबई को 571 रनों के विशाल लक्ष्य तक पहुंचाया। मदन लाल का मानना है कि निरंतर अच्छा प्रदर्शन करना होगा इन खिलाड़ियों को अगर उन्हें भारतीय टीम में जगह बनानी है।
रणजी ट्रॉफी का जो सितारा है ये तो बहुत बड़ा सितारा है क्योंकि ये नेशनल चैंपियनशिप का फाइनल होता है, तो यहाँ से ही खिलाड़ी जो है आगे जाते हैं। अगर वो कंसिस्टेंट लगातार परफॉर्मेंस करते रहते हैं तो इनको एक मौका मिलता है अगर आप अच्छा रणजी ट्रॉफी में खेलते हैं।
वहीं रांची में भारतीय महिला टीम का दबदबा बना रहा जब भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कल श्रीलंका को दूसरे एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से मात दी और 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बना ली। श्रीलंका की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया पर श्रीलंका महिला टीम के बल्लेबाज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और पूरी टीम 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 178 रन ही बना पाई। जवाब में भारतीय महिला टीम के लिए कप्तान मिथाली राज ने 53 रनों की पारी खेली और स्मृति वर्मा ने 46 और हरमनप्रीत कौर ने 41 रनों की पारी का सहयोग दिया और भारतीय महिला टीम ने 179 रनों का लक्ष्य 43.1 ओवर में हासिल कर लिया। मदन लाल काफी खुश दिखे भारतीय महिला टीम के प्रदर्शन से।
महिलाओं का जो प्रदर्शन है अच्छा भी है और आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव भी कर रहे हैं, तो ये खुशी है मुझे जानकर कि वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है तरक्की कर रहे हैं। महिलाओं ने अगर अच्छा प्रदर्शन करना है उनको कब कोई ना कोई बड़ी टूर्नामेंट जीतनी पड़ेगी जिससे कि जो हमारे कंट्री में और ज्यादा महिलाएं हैं वो क्रिकेट खेलें और आगे आएं।
वहीं हैदराबाद में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने ग्रुप ए के पुरुष मुकाबलों में सिंगापुर को दी 5-0 से मात। सिंगापुर के खिलाफ भारत ने 3 सिंगल्स और 2 डबल्स मुकाबले जीते और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।
और अब हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंत में, सुनिए प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार और फिर बुधवार को हुई मारपीट के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ओपी शर्मा को भी दिल्ली पुलिस ने सम्मन भेजा है और उन्हें आज पेश होने को कहा है। तुर्की की राजधानी अंकारा में हुए एक ताकतवर बम धमाके में 28 लोगों की मौत हो गई है और 61 लोग घायल हो गए हैं। खेलकूद के साजो सामान बनाने वाली कंपनी नाइकी ने फिलीपींस के मुक्केबाज मैनी पैकियाओ के साथ अपना अनुबंध खत्म कर दिया है। मैनी पैकियाओ ने समलैंगिकों के बारे में एक विवादास्पद बयान दिया था। सीरिया में लड़ाई में फंसे 5 इलाकों तक मानवीय सहायता पहुंचनी शुरू हो गई है। अमरीका के विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा है कि वो चीन के साथ गंभीर विचार विमर्श करना चाहते हैं। कैरी ने दक्षिणी चीन सागर में चीन के अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम स्थापित करने की खबरों का जिक्र करते हुए ये बात कही और इस पर चिंता भी जाहिर की। ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की 2 दिनों की बैठक आज से शुरू हो रही है, जिसमें ब्रिटेन को यूरोपीय संघ में बने रहने के लिए क्या प्रस्ताव दिया जाए इस पर चर्चा होगी। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं खत्म होता है। स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने, पंकज प्रियदर्शी को अनुमति दीजिए। अब से ठीक 1 घंटे बाद 8 बजे विश्व भारती में होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।